दिन भर तारीख 16 दिसंबर दिन शुक्रवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। संसद का शीतकालीन सत्र चढ़ा, नोटबंदी पर हंगामे की भेंट, सदन में चर्चा नहीं वाक युद्ध हुआ, राहुल मिले मोदी से, मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना।
देश में बेनामी संपत्ति इकट्ठी करने वालों को खुली छूट दे दी, ये सारी मुसीबत की जड़ ये है कि इनके लिए देश से बड़ा दल है, हमारे लिए दल से बड़ा देश है।
याद करेंगे 1971 के युद्ध में परमवीर चक्र से सम्मानित अरुण खेत्रपाल को, युद्ध पर जाने की तैयारी उन्होंने कैसे की।
जाते जाते उन्होंने अपना गोल्फ बैग उठा लिया और साथ साथ में ब्लू पेट्रोल वो भी पैक कर लिया। पिताजी ने उनसे पूछा, ये क्या ले जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब हम लाहौर पहुंचेंगे तो गोल्फ तो खेलेंगे और ये ब्लू पेट्रोल तो पार्टी होगी, ब्लू पेट्रोल तो पहनेंगे।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार सुशीला सिंह से। लोकसभा में थोड़ी देर तक नोटबंदी के मुद्दे पर हुए हंगामे के बाद आज राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज बिल पास हो गया। वहीं राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। आज संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था। इस बीच दिन में कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से किसानों का कर्ज माफ करने की मांग की। वहीं नोटबंदी के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्सेस ने अब से कुछ ही देर पहले किए गए एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि अब तक 316 करोड़ से ज्यादा रकम जब्त की जा चुकी है, जिसमें 80 करोड़ से ज्यादा नए नोट और 76 करोड़ के गहने शामिल हैं। इधर भारत सरकार के राजस्व विभाग ने काला धन जमा कराने की योजना के बारे में बताते हुए कहा कि जो रकम बैंकों में जमा की जाएगी उसका मतलब ये नहीं है कि वो सफेद हो गई है। भारत सरकार में राजस्व सचिव हसमुख आद्या का कहना था,
कोई ये ना मान ले कि हमने बैंक में जमा करा दिया है पैसा इसलिए हमारा पैसा वाइट हो गया। जब तक बैंक में आए पैसे की पूरी जांच ना हो जाए, जब तक अगर उसके ऊपर टैक्स नहीं पे किया गया है तो जब तक उसके ऊपर टैक्स पेमेंट नहीं होता है तब तक उसको कोई भी आदमी वाइट मानने की भूल ना करे।
ये थे भारत सरकार में राजस्व सचिव हसमुख आद्या के शब्द। बीजिंग की एक अदालत ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में 26 लोगों पर आरोप तय कर दिए हैं। इसे चीन में अब तक का सबसे बड़ा ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला बताया जा रहा है। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने इजबाओ वेबसाइट के जरिए धोखाधड़ी की है। इजबाओ एक समय में देश की बड़ी उधार देने वाली वेबसाइट मानी जाती थी। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने इजबाओ की वेबसाइट पर नकली परियोजनाओं के विज्ञापन देकर करीब 8.5 अरब डॉलर से इकट्ठा ज्यादा किए और बाद में इस रकम का बड़ा हिस्सा लौटाने में विफल रहे। इन संदिग्ध लोगों पर मूल्यवान धातुओं की तस्करी और अवैध हथियारों को रखने का भी आरोप है। सीरिया के अलेप्पो शहर के पूर्वी भाग से आम नागरिकों और विद्रोही लड़ाकों को हटाने के लिए चल रहे अभियान को रोक दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि वहां काम कर रही सहायता एजेंसियों को बिना कोई कारण दिए वहां से निकल जाने को कहा गया है। सीरिया में मौजूद विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि का कहना है कि यह समझा जा रहा है कि यह संदेश रूस की तरफ से आया है, जो इलाके पर नज़र बनाए हुए है। हालांकि इस अभियान को स्थगित किए जाने को लेकर विरोधाभासी बातें आ रही हैं। इलाके को खाली करने के लिए जहां से लोग बस ले रहे हैं वहां धमाके होने की भी रिपोर्टें आ रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारी एलिजाबेथ हॉफ का कहना था,
We have had 9 staff members on the ground at the Ramusi checkpoints, but a few minutes ago...
हमारे स्टाफ के 9 सदस्य वहां मौजूद थे, लेकिन कुछ मिनटों पहले ही इस ऑपरेशन को रोक दिया गया और ICRC, SARC और WHO को एम्बुलेंस और बसों समेत यहां से निकलने की सूचना दी गई है। ये सूचना देने के लिए कोई कारण नहीं दिया गया है। ये थी एलिजाबेथ हॉफ के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीरिया संघर्ष से जुड़े सभी पक्षों से राष्ट्रव्यापी संघर्ष विराम पर सहमति जताने की मांग की है। पुतिन का कहना था कि तुर्की मध्यस्थताओं के जरिए रूस सीरिया के विपक्षी सदस्यों से बातचीत कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार में अल्पसंख्यक रोहिंग्या समूह के साथ हो रहे व्यवहार को लेकर आंग सांग सूची के नेतृत्व वाली सरकार की कड़ी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दफ्तर का कहना है कि उन्हें रोज बलात्कार, हत्याएं और दूसरे तरह की प्रताड़ना दिए जाने की रिपोर्टें मिल रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख का कहना है कि इस मामले में म्यांमार सरकार का रुख प्रतिकूल और असंवेदनशील है। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। भारत के संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन था, लेकिन वो भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। पूरा का पूरा सत्र नोटबंदी की भेंट चढ़ा। देश के लोग बैंकों की लाइनों में चुपचाप खड़े रहे और लोगों के प्रतिनिधि संसद में खड़े होकर यानी कि नेता शोरगुल करते रहे। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि सत्र के दौरान लोकसभा में 21 बैठकों में सिर्फ 19 घंटे कार्यवाही चली। उनका कहना था कि व्यवधान के चलते लगभग 92 घंटे का समय बर्बाद हुआ, जो कि अच्छी बात नहीं है और इससे जनता में छवि धूमिल होती है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज उनसे मिले। उन्होंने किसानों के कर्ज माफी को लेकर प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। नोटबंदी को लेकर संसद से लेकर सड़क तक क्या हुआ, सुनिए नितिन श्रीवास्तव से।
आखिरकार संसद का एक और सत्र राजनीतिक दलों में आपस की तूतू मैमे की भेंट चढ़ गया। केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई नोटबंदी पर हंगामे के चलते जीएसटी जैसे दूसरे तमाम महत्वपूर्ण कानून अभी भी पारित नहीं हो सके हैं। इस पूरे सत्र के दौरान नोटबंदी पर भी संसद में कोई ठोस चर्चा नहीं हो पाई। विपक्ष ने शुक्रवार को नोटबंदी की लड़ाई को राष्ट्रपति के सामने पहुंचाने की ठानी। दोपहर को विपक्षी दलों के कई बड़े नेता नोटबंदी और इससे जुड़ी समस्याओं पर बहस नहीं कराने के मामले को लेकर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिले। बैठक से निकलकर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा,
16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक जो हाउस चलना था, जो डिस्कशन होना था बहुत से बिल पे, डिमोनेटाइजेशन इशू पे, लेकिन सरकार के रुख के वजह से और उनके एटीट्यूड के वजह से सदन नहीं चल पाया। हालांकि हमने पूरी कोशिश की।
हालांकि नोटबंदी पर मोदी सरकार के खिलाफ ज्यादातर एकजुट दिखे विपक्ष में थोड़ी दरार पैदा होती भी दिखाई पड़ी, क्योंकि राष्ट्रपति से विपक्ष की हुई इस मुलाकात में चार प्रमुख पार्टियां बीएसपी, एनसीपी, एसपी और वाम दल के नेता शामिल नहीं हुए। सीपीएम नेता सीताराम रचूरी ने इसकी दलील दी।
जब इस तरीके की बात आई तो हमने कहा कि हमारा फोकस रहेगा देश के लोगों के पास जाओ, हम वो फोकस रखेंगे। तो इसलिए हमने कहा कि जैसे पहले से हम कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के पास जाने से कोई मतलब नहीं।
वहीं जेडीयू सांसद शरद यादव ने राष्ट्रपति से मिलने के बाद कहा कि छोटे दुकानदारों, व्यापारियों और किसानों की हालत बिगड़ती जा रही है और उन लोगों ने राष्ट्रपति के सामने इससे जुड़े कई मुद्दे उठाए हैं। उधर दोपहर एक बड़ी मुलाकात और हुई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें कर्ज माफी सहित किसानों की मांग और नोटबंदी के कारण हो रही समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। खुद राहुल गांधी ने इस मुलाकात के पीछे का मकसद बताया।
जिस प्रकार सरकार ने 1,40,000 करोड़ रुपए माफ किए, उसी प्रकार किसानों के लिए वो कर्जा माफ करें। हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। पंजाब में हर रोज एक किसान आत्महत्या करता है, तो हमने प्रधानमंत्री से कहा है कि वो जल्दी से जल्दी हिंदुस्तान के किसान को राहत दें।
इस बीच नोटबंदी मामले पर भाजपा सरकार की तरफ से नए आदेश अभी भी आने जारी हैं। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा है कि काले धन के बारे में जानकारी देने की नई योजना के तहत घोषणाओं को गोपनीय रखा जाएगा और जानकारी का इस्तेमाल किसी को दंडित करने के लिए नहीं किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के अपने फैसले को सही ठहराने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी रखा है। संसद का शीत सत्र खत्म होने पर भारतीय जनता पार्टी सांसदों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा।
मोदी ने जल्दबाजी क्यों करती? आपने 88 से अब तक उसको लागू नहीं किया। देश में बेनामी संपत्ति इकट्ठी करने वालों को खुली छूट दे दी और ये सरकार कानून पारित कर चुकी है, नोटिफाई कर चुकी है, लागू करने के लिए कदम उठाएगी और फिर आप चिल्लाना शुरू करोगे क्या? क्या देश ऐसे चलाओगे क्या? ये सारी मुसीबत की जड़ ये है कि इनके लिए देश से बड़ा दल है, हमारे लिए दल से बड़ा देश है।
बहरहाल नोटबंदी का मामला न तो संसद में किसी अंजाम तक पहुंचता दिखा और न ही ज्यादातर ग्राहकों को बैंकों के सामने बड़ी राहत मिलती दिखी। बड़ी लाइनों का सिलसिला जारी है। हालांकि सरकार और बैंकों का दावा है कि अब नए नोटों की किल्लत खात्मे की ओर है। नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी दिल्ली।
तो नोटबंदी पर ये जो घमासान मचा है, इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ सवाल तय किए हैं। मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अगुवाई में जजों की संवैधानिक पीठ इन सवालों के जवाब खोजेगी। मेरे साथ स्टूडियो में संदीप सोनी मौजूद हैं। संदीप, सबसे पहले तो उसकी पृष्ठभूमि बताइए और फिर बताइए कि सवाल कौन कौन से हैं जिनके जवाब संवैधानिक पीठ खोजेगी।
देखिए मोहनलाल जी, सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के मामले में किसी तरह की राहत देने से आज मना किया। आपको ध्यान होगा कि 8 नवंबर को जब मोदी सरकार ने 1500 के पुराने नोट बंद करने की घोषणा की थी, तो उसके बाद कई लोगों ने अदालतों के दरवाजे खटखटाए थे कि सरकार इस तरह का कदम कैसे उठा सकती है, और लोगों ने इसके लिए भारतीय संविधान का हवाला दिया था और ये कहा था कि भारत का जो संविधान है वो ऐसा कोई कदम उठाने से सरकार को रोकता है जिससे नागरिकों के मूल अधिकार का हनन होता है। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया है कि 5 जजों की एक संविधान पीठ बनाई जाएगी जो संविधान के हिसाब से नोटबंदी के फैसले के तमाम पहलुओं की पड़ताल करेगी। अब किन सवालों के जवाब तलाशने हैं मैं बताता हूं आपको। पहला, 8 नवंबर को विमुद्रीकरण की अधिसूचना RBI अधिनियम के अनुसार जारी की गई क्या? यदि की गई तो क्या वो अधिसूचना भारतीय संविधान के हिसाब से है, संविधान सम्मत है या नहीं है? और अगली, क्या 8 नवंबर की अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के विपरीत हैं? क्या बैंकों से वैधानिक राशि को निकालने पर जो एक तरह का प्रतिबंध है, एक सीमा बांधी गई है, वो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करती है?
और हम अपने श्रोताओं को ये बता दें कि ये जो संविधान की जो अनुच्छेद है ये मूल अधिकार है।
बिल्कुल। फिर ये सवाल भी उठाया है कि 8 नवंबर की अधिसूचना को क्या प्रक्रियागत और तार्किक तरीके से लागू नहीं किया गया जिसकी वजह से इतनी दिक्कतें हो रही हैं? फिर 8 नवंबर की अधिसूचना का जिक्र बार बार होगा इसलिए कि क्या ये अधिसूचना जो है वो संविधान के अनुच्छेद 300A जो संपत्ति का अधिकार है उसका उल्लंघन करती है?
इसका श्रोताओं को बता दें कि संपत्ति का जो अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं है।
नहीं है,
नहीं।
अच्छा, आपको ध्यान होगा सहकारी बैंक वाले जो हैं पैसे निकाल नहीं पा रहे थे, तो क्या जिला सहकारी बैंक अपने पैसा नहीं निकाल पा रहे लोग किसान, तो क्या ये ऐसा ना माना जाए कि उनके साथ भेदभाव किया गया? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब संविधान पीठ को तलाशना है।
बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सोनी। और यहीं पर अपने श्रोताओं को हम बताते हैं कि कल BBC इंडिया बोल का विषय क्या है।
BBC इंडिया बोल।
गेहूं से आयात शुल्क हटाकर क्या किसानों की मदद कर रही है नरेंद्र मोदी सरकार? विदेशों से गेहूं खरीदा गया तो अपनी फसल का क्या करेगा भारतीय किसान? इस शनिवार BBC इंडिया बोल में इसी विषय पर हमें इंतजार रहेगा आपकी राय का। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
BBC इंडिया बोल।
दिन भर कार्यक्रम में अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर का। शीत युद्ध के जमाने में प्रतिद्वंदी अमेरिका और रूस के बीच एक बार फिर से जबानी जंग छिड़ी है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने रूस पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के दौरान साइबर अटैक का आरोप लगाया है और कहा है कि अमेरिका इसका जवाब देगा, पर वक्त भी वो खुद तय करेंगे और जगह भी। लेकिन रूस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। BBC संवाददाताओं की रिपोर्टों का भेजा सार सुनिए राजेश जोशी से।
ओबामा ने सीधे सीधे ये नहीं कहा कि रूस के साइबर अटैक से डोनाल्ड ट्रंप को फायदा हुआ, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन के लिए इससे मुश्किलें खड़ी हो गई थीं। अमरीकी रेडियो स्टेशन NPR पर उन्होंने मामले की पूरी जांच करवाने का ऐलान किया।
आई थिंक देयर इज नो डाउट दैट व्हेन एनी फॉरेन गवर्नमेंट ट्राइज टू
मेरे विचार से अगर कोई विदेशी सरकार हमारे चुनावों की विश्वसनीयता पर असर डालने की कोशिश करती है तो हमें कार्रवाई करनी होगी। इसका समय और जगह हम खुद तय करेंगे। कुछ कार्रवाइयां जमाने के सामने प्रचार करके की जाएंगी और कुछ इस तरह से नहीं होंगी। पुतिन मेरी भावनाओं से अच्छी तरह परिचित हैं क्योंकि मैंने इस बारे में सीधे उनसे बात की है।
अमरीका का आरोप यह है कि रूस ने हिलेरी क्लिंटन के नजदीकी सहयोगी के ईमेल अकाउंट पर हमला किया। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA का भी कहना है कि उसके पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि हैकिंग करने वालों के तार रूस से जुड़े थे और चुनावों की हवा को डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में मोड़ना उनका मकसद था। पर रूस ने बराक ओबामा के आरोपों को खारिज कर दिया है। रूस सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि आरोप लगाने से पहले अमरीका को सबूत पेश करने चाहिए। उन्होंने कहा है कि या तो अमरीका को ऐसी बातें बंद कर देनी चाहिए या फिर कम से कम कुछ सबूत पेश करने चाहिए, वरना यह सब निरर्थक लगता है। उधर रूसी थिंक टैंक के सेर्गेई कारागनोव ने BBC से कहा कि ये आरोप महज बकवास हैं और इस पर सिर्फ हंसा जा सकता है।
एक राष्ट्र के लिए, एक महान राष्ट्र के लिए इससे अपमानजनक बात क्या हो सकती है कि वो कहे कि कोई हैकर, चाहे वो किसी सरकार के आदमी से ही संबंधित क्यों ना हो, उसकी राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। ये एक मजाक है।
हाल के वर्षों में रूस और अमेरिका के संबंधों में कड़वाहट घुलने के कई उदाहरण सामने आए हैं। यूं तो दोनों देश पिछले कई दशकों से एक दूसरे की आंख की किरकिरी बने हुए थे, लेकिन सोवियत संघ के खात्मे के बाद ये माना जाने लगा था कि ये शीत युद्ध की भी समाप्ति है। पर अब फिर से दोनों देश सीधे एक दूसरे के सामने खम ठोके खड़े नजर आ रहे हैं।
और कार्यक्रम में अब वक्त है विवेचना का। 1971 को ज्यादातर लोग बांग्लादेश युद्ध के लिए याद करते हैं, लेकिन उस लड़ाई में पश्चिमी मोर्चे पर भी घमासान युद्ध हुआ था। बंस्तर के टैंक युद्ध में 21 साल के सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने पाकिस्तान के 4 टैंक नष्ट करने के बाद अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिसके लिए भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र उन्हें दिया गया। अरुण खेत्रपाल की 45वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
थोड़ा सा अलग सा नाम था उनके सेंचुरियन टैंक का, फामागुस्ता, साइप्रस के एक बंदरगाह के नाम पर। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल अपने सामने छितरे पड़े हुए पाकिस्तानी टैंकों को निहार रहे हैं। उनमें से ज्यादातर आगे बढ़ने के काबिल नहीं है। उनके खुद के टैंक में आग लगी हुई है, लेकिन अभी उसकी फायर करने की क्षमता बरकरार है। खेत्रपाल के गले की नस बुरी तरह से फड़क रही है। अगर वो 150 गज की दूरी पर आते हुए टैंक को भी उड़ा देते हैं तो उनके द्वारा ध्वस्त किए गए टैंकों की संख्या 5 हो जाएगी। उन्होंने अपना रेडियो सेट ऑफ कर रखा है क्योंकि उनका कमांडर उनसे कह रहा है, अरुण वापस आओ। तभी अचानक सीटी की आवाज करता हुआ एक गोला उनके टैंक के कपोला को भेदता हुआ निकल जाता है। उस स्प्लिट सेकेंड में अरुण को एहसास नहीं होता कि उनके पेट के चीथड़े उड़ चुके हैं। गनर नथु सिंह उन्हें उनकी सीट से उठाने की कोशिश करते हैं। खेत्रपाल के मुंह से बस इतना निकलता है, मैं बाहर नहीं आ पाऊंगा। कुछ ही पलों में अरुण का सिर लुढ़क जाता है। उनके पेट का जख्म इतना गहरा है कि उनकी आंतें बाहर निकल आई हैं। समय है 10:15, दिन 16 दिसंबर 1971। अरुण खेत्रपाल दम तोड़ते हैं। उनकी उम्र है मात्र 21 साल। 3 ग्रेनेडियर्स के कर्नल चीमा को वो दृश्य अभी भी याद है जैसे वो कल की ही बात हो।
जो हमारे स्क्वाड्रन कमांडर थे मेजर बाल, उन्होंने देखा कि भाई प्रेशर जो है बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इन्होंने और मदद मांगी कि हमें और टैंक जो है भिजवाइए। और वो जो टैंक उन्होंने भिजवाए उसके अंदर 3 टैंक थे, कमांडेड बाय 3 ऑफिसर्स, एक कैप्टन मल्होत्रा, एक लेफ्टिनेंट अलावत और सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। इन्होंने तीनों ने जो है उनके 7 टैंक डिस्ट्रॉय किए। इतनी देर में अलावत का टैंक जो है वो हिट हो गया, जलना शुरू हो गया। उसके बाद जो अरुण खेत्रपाल का टैंक जो है ये भी हिट हो गया। इसको बोला गया कि तुम पीछे हटो, तो ये कहने लगा कि मैं पीछे अभी नहीं हट सकता हूँ, माई टैंक माई गन इज स्टिल फायरिंग। इसने अपना रेडियो सेट जो है वो बंद कर दिया ताकि इसको दोबारा हुक्म ना मिले कि तुम पीछे आओ। अरुण खेत्रपाल ने 4 टैंक उनके जो है डिस्ट्रॉय कर दिए। और जब चौथा टैंक डिस्ट्रॉय किया, इन्होंने जब फायर किया और उधर से जो है 31 कैब के स्क्वाड्रन कमांडर ने फायर किया, तो दोनों टैंक डिस्ट्रॉय हो गए और वो जो स्क्वाड्रन कमांडर जो थे वो भी जख्मी हो गए थे और ये भी जो है शहीद हो गए थे।
6 फीट 2 इंच लंबे अरुण खेत्रपाल एक सैनिक परिवार से आते थे। उनके दादा ने प्रथम विश्व युद्ध और पिता एमएल खेत्रपाल ने द्वितीय विश्व युद्ध और 1965 की लड़ाई लड़ी थी। बचपन से ही अरुण में नेतृत्व और जिम्मेदारी के गुण थे। अरुण के छोटे भाई मुकेश खेत्रपाल याद करते हैं।
मेरे पिताजी दिल्ली में पोस्ट थे, तो हम सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़े। सनावर जाने से पहले स्कूल जैसे ख़त्म होता था तो कार का पुल था, उसमें हमें पिकअप होता था। उस दिन कार नहीं आई किसी वजह से, काफ़ी देर तक हम बैठे रहे। अरुण मतलब मेरे ख्याल में 7 साल के होंगे और मैं 6 साल का। तब लोग सब बच्चे सब घर चले गए और हम वहाँ पर अकेले बैठे रहे। काफ़ी देर तक हम वेट करते रहे। फिर अरुण ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, घर पैदल चलते हैं। तो हम काफ़ी दूर के ई आर मेस है यहाँ पे, सांगी मेस के पास में, तो लंबा चलता तो सामने, अच्छा चलिए। तो मैं चलता गया, पर हमारे यहाँ जैसे स्कूल के बस्ते भारी भारी होते थे, तो बीच में मैंने कहा कि अब ये बस्ता नहीं, तो उन्होंने मेरा बस्ता उठा लिया। मैं कहा, पूछता गया कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं, और मैं तो रोता गया। और अरुण ने बिल्कुल ऐसे एक भी आंसू नहीं दिखाया और मुझे दिखाया कि नहीं नहीं यहीं है, थोड़ा और आगे, थोड़ा हौसला दे गए। तो करते करते हम घर पहुंच गए, और जब हम घर पहुंचे तब अरुण बहुत ज़ोर से रोए। मुझे नहीं दिखाना था उनको, कहीं ये मुझे महसूस कर लेते कि वो भी खुद घबराए हुए हैं तो फिर मेरा तो जो ना हालत बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता।
यही नहीं, अरुण में दया और करुणा का भाव भी कूट कूट कर भरा हुआ था। सैनिक इतिहासकार और परमवीर चक्र विजेताओं पर किताब द ब्रेव लिखने वाली रचना बिष्ट रावत बताती हैं।
वो 6 साल के थे और उनके स्कूल में कोई गरीब बच्चा था, तो अपना स्वेटर उसको दे आए। वो सर्दी का मौसम था, शिलोंग में शायद नॉर्थ ईस्ट में कहीं पोस्टेड थे उनके फादर, और घर में ये डर से कि माँ डांटेगी, उन्होंने झूठ बोला कि मेरा स्वेटर गुम हो गया। वो बच्चा बाद में मुकेश खेत्रपाल उनके छोटे भाई को मिला, IIT दिल्ली में शायद उनको मिला, तो उस बच्चे को याद था कि कैसे 6 साल की उम्र में वो अपना स्वेटर दे करके आए थे।
1971 की लड़ाई से पहले अरुण अहमदनगर में यंग ऑफिसर्स कोर्स कर रहे थे कि ये आदेश जारी हुआ कि सभी अफसर कोर्स छोड़कर अपनी अपनी रेजिमेंट में चले जाएं। उस कोर्स में उनके बैचमेट और बाद में ब्रिगेडियर बने ब्रिजेंद्र सिंह याद करते हैं।
ये एक्चुअली 6 महीने का कोर्स था, लेकिन करीब 3 या 4 दिन ही हुए थे कि फौज को मोबिलाइज कर लिया गया और लड़ाई के आसार नज़र आने लगे। हमको एक दिन सबको इकट्ठा किया गया अहमदनगर में और हमें बताया गया कि आर्मी मोबिलाइज हो रही है और आपको अपने अपने यूनिट्स में वापस जाना है। उस ज़माने में कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी अहमदनगर के लिए, तो एक पैसेंजर ट्रेन चलती थी जो मनमाड़ लेके आती थी, और मनमाड़ से फिर हमने पंजाब मेल पकड़नी थी। रिजर्वेशन तो थे नहीं क्योंकि नोटिस बहुत कम था, तो मनमाड़ स्टेशन पे जब पंजाब मेल आई तो जगह ना होने के कारण हम सब, उसका जो डाइनिंग कार होती थी उन दिनों में, तो उस डाइनिंग कार में घुस गए। तो हमारे को सबने आके बताया रेलवे वालों ने कि जी ये आप नहीं, यहाँ यहाँ नहीं बैठ सकते आप, और नीचे उतरिए। तो हमने बड़ा उन्हें कहने की कोशिश की कि हम देश की रक्षा के लिए जा रहे हैं, ये है वो है, तो लेकिन वो कुछ इम्प्रेस हुए नहीं हमसे। सो उन्होंने कहा अगर नहीं उतरेंगे तो हम इस डाइनिंग कार को डिटैच कर देंगे ट्रेन से। पर आखिर में चलो ये हुआ कि रेलवे वालों ने कहा कि चलो हम आपको, रिजर्वेशन तो है नहीं, हम दे नहीं सकते आपको जगह कोई, लेकिन कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देते हैं, आप नीचे उतर जाओ। तो जैसे ही हम नीचे उतरे तो उन्होंने ट्रेन चला दी। तो फिर हम भागते दौड़ते, कोई किसी डब्बे में, कोई किसी डब्बे में चढ़ा, तो अरुण पहले एक डब्बे में चढ़ गया था और वो जो बाहर रेलिंग होती है दरवाजे के साथ वो पकड़ के खड़ा था, और मैं अभी भाग रहा था तो मेरा पाँव स्लिप कर गया और कुदरतन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के ऊपर खींच लिया मुझे, वरना उस दिन शायद मैं ट्रेन के नीचे आ जाता। उनके अंदर ये जो क्वालिटीज़ थी लीडरशिप की और किसी भी चीज़ को बखूबी करने की और मदद करने की, ये शुरू से ही हर उनके एक्शन में, चाहे वो स्पोर्ट्स खेलते थे या कुछ और करते थे, तो हर जगह झलकती थी।
अपनी रेजिमेंट में जाने से पहले अरुण कुछ घंटे दिल्ली में रुके, अपने माता पिता और भाई से मिले और फिर फ्रंट के लिए रवाना हुए।
घंटी बजी, शाम को हमने देखा तो अरुण बाहर खड़े, तो हमने कहा कि आप कैसे, कि नहीं नहीं हमारा कोर्स कैंसिल हो गया, हम तो फॉरवर्ड एरिया में जा रहे हैं, अब मैं बस ये मोटरसाइकिल यहाँ पे छोड़ने जा रहा हूँ। जब अरुण जा रहे थे तो सारी चीज़ छोड़ दी, पर जाते जाते उन्होंने अपना गोल्फ बैग उठा लिया, और साथ साथ में एक होता है इनका जो फॉर्मल डाइनिंग का ब्लू पेट्रोल जिसको कहते हैं, जो है ना इनकी पार्टीज होती हैं, तो ब्लू पेट्रोल वो भी पैक कर लिया। पिताजी ने उनसे पूछा ये क्या ले जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं जब हम लाहौर पहुंचेंगे तो गोल्फ तो खेलेंगे, ही वॉज अ गुड गोल्फर, और ये ब्लू पेट्रोल पार्टी होगी, ब्लू पेट्रोल तो पहनेंगे। ये उनके जो है ना दिल की बात थी, जो होता जो उन्होंने सोच के जैसे वो पहुंचे, चाहे आप जोश कहें, यंग मैन थे। एंड एक्चुअली जब ये वॉर के बाद में वो गोल्फ बैग और वो ब्लू पेट्रोल, ये दो चीजें आगे हमें मतलब रिटर्न करी गई थी।
16 दिसंबर 1971 को 20 स्क्वाड्रन के कमांडर ने SOS किया कि उन्हें री इन्फोर्समेंट की जरूरत है क्योंकि पाकिस्तानी टैंक बड़ा हमला करने के लिए जमा हो रहे हैं।
दुश्मन बार बार 14 टैंकों के साथ अटैक कर रहा था, एक वेव फिर दूसरी वेव, इस प्रकार मल्होत्रा का टैंक जो था वो टेक्निकल कोई उसमें प्रॉब्लम आ गया और उसकी गन बंद हो गई फायर करनी। अलावत जो था, अवतार अलावत, उसके टैंक के ऊपर गोला लगा और वो उसमें आग लग गई और वो खुद जख्मी हो गए। तो सिर्फ एक अरुण खेत्रपाल थे जो अकेले पूरे फ्रंट को संभाले हुए थे। तो उन्होंने पहले तो 4 टैंक बर्बाद किए, उनके फिर टैंक पे भी गोला लगा और उसमें आग लग गई, और उनको CO साहब ने बोला कि आप अपने टैंक से हट जाओ, तब उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी गन फायर कर रही है और मैं बिल्कुल नहीं पीछे हटूंगा। उनका ड्राइवर था पराग सिंह। जब आग लगी टैंक में, उसने कहा कि साहब मैं पीछे थोड़ा सा 10-15 गज पीछे ले लेता हूँ टैंक को और आग को बुझा के फिर आगे आ जाएंगे। तब अरुण ने कहा कि नहीं, एक इंच भी नहीं, क्योंकि सीओ साहब का ये हुक्म था कि हम जहाँ खड़े हैं वहीं से खड़े होकर लड़ेंगे।
कर्नल चीमा बताते हैं कि लड़ाई खत्म होने के बाद पाकिस्तानी कमांडर ने भारतीय इलाके में आकर अरुण खेत्रपाल के टैंक की ओर इशारा करके पूछा था कि इसे कौन चला रहा था।
जब लड़ाई खत्म हुई, उनके स्क्वाड्रन कमांडर आए तो वो कहने लगे कि भाई मैं उस टैंक कमांडर को मिलना मांगता हूँ जिसने मेरे टैंक को इतने क्लोज रेंज से डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत तगड़ा स्क्वाड्रन कमांडर समझता था। तो लेकिन उसको हम ये बताना नहीं चाहते थे कि वो शहीद हो गए हैं। तो उनको बताया गया कि नहीं, वो हमको पीछे जो है वो दूसरी जगह पे उनको मूव कर दिया गया है।
अरुण को इस वीरता के लिए भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र मिला। इस घटना के लगभग 30 साल बाद अरुण खेत्रपाल के पिता ब्रिगेडियर ML खेत्रपाल को अपनी जन्मभूमि पाकिस्तान जाने का मौका मिला। लाहौर हवाई अड्डे पर उनका स्वागत ब्रिगेडियर ख्वाजा मोहम्मद नासिर ने किया।
पिताजी की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं एक दफ़ा अपने होम टाउन सरगोधा को मैं देखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो बैक। वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के पढ़े हुए थे, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का एनुअल डे फंक्शन था, तो ये लोग मतलब फ्लाइट पकड़ के वहाँ पे गए। तो जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे ये था कि उन्होंने ओल्ड बॉयज़ के यहाँ इनको कहीं रहने का इंतज़ाम इनका कर रखा था। तो एक ब्रिगेडियर साहब थे तो उन्होंने कहा कि आप ब्रिगेडियर साहब आप इनके साथ में रहिए। तो ये बहुत ही खातिर उन्होंने करी। एक शाम पहले जब अगले सुबेरे उनको अपनी फ्लाइट पकड़ के वापस आना था, तो ब्रिगेडियर साहब ने, ब्रिगेडियर नासिर उनका नाम है, तो उन्होंने मैं कहा कि अंकल ब्रिगेडियर खेतपाल सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बेटा बोलो। कि 71 की वॉर में हम भी थे। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे बेटे भी थे। हाँ मुझे पता है। आपको कैसे पता? मैं 13 लांसर्स का हूँ। एंड फाइनली ही सेड कि आई वॉज द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ दैट रेजिमेंट ऑफ 13 लांसर्स एंड पुनाहौस से आमना सामना हम जब रह गए थे तो खाली अरुण खेत्रपाल आपके बेटे और मेरी टैंक का आमने सामना रह गया था। हाँ हो सकता था कि मैं नहीं जीवित रह सकता, कि आज मैं नहीं होता आपको मिलने का मौका मिलना, और मुझे पता है कि जो गोला हमारी मेरी टैंक से फायर हुआ था वो आपकी पेटर से, वो शहीद इसी मुझसे हुए थे। ऑफ कोर्स ही सेड लॉट्स ऑफ अदर गुड थिंग्स कि इफ आई वाज द फादर ऑफ सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल आई वुड बी वेरी प्राउड ऑफ हिम, हैड इट नॉट बीन फॉर हिम ही ब्रोक आवर अटैक एंड वी कुड नॉट वी फेल्ड इन आवर एंडेवर।
भारत में अब तक 21 परमवीर चक्र विजेता हुए हैं। वो ये सम्मान लेने वाले सबसे युवा सैनिकों में से एक थे। रचना बिष्ट रावत याद करती हैं।
रेहान, अरुण क्लैरिनेट बजाया करते थे। ऑल लैंग साइन, एक जो बहुत फेमस आर्मी में बहुत बजता है वो वाला संगीत वो बजाया करते थे, जो कि रॉबर्ट बर्न्स की एक कविता है जिसका मतलब है कि जो चले गए हैं उन्हें क्या हमें भूल जाना चाहिए। बहुत सारे हीरोज को तो हम भूल गए हैं, बट इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस कि हम अरुण को नहीं भूले हैं। और अरुण हमेशा हमारी यादों में 21 साल के अच्छे हसीन नौजवान जो बहुत ही बहादुर थे। एक उनकी फ़ोटोग्राफ है जिसमें वो यूनिफॉर्म पहन करके कमर पे हाथ रख कर मुस्कुरा रहे हैं, जो मैंने उनकी मदर के बेडरूम में भी देखी थी। वही फ़ोटो मन में आती है। आई थिंक मुकेश ऑल्सो टोल्ड मी, जब मैंने उनको इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा कि देखो मैं कितना बुढ़ा हो गया हूँ, मेरे बाल गिर गए हैं, पर अरुण तो हमेशा 21 साल का ही रहेगा।
Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? For old lang syne, dear, for old.
Rehan Fatel, BBC, Delhi.
परमवीर चक्र से सम्मानित अरुण खेत्रपाल को याद कर रहे थे रेहान फजल। और अब कार्यक्रम में हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम आपको खेल समाचार सुनाएं या मुख्य समाचार सुनाएं। अगली सभा यानी कि सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। मोहनलाल शर्मा को राजेश चौहान के साथ विदा दें, नमस्कार।